أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. हमने बात ये की थी कि इंसान के जो आमाल हैं और जो जो अमल इंसान अंजाम देता है वो जिस्मानी नहीं है, बल्कि उसकी कुछ और हकीकत है, अमल की कुछ और हकीकत है जिसका आउटपुट जिस्मानी है, फिज़िकल है। और जो रिवायत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से नकल की थी उसमें यही मतलब था कि अमल दर हकीकत इंसान की वो नीयत का नाम है, जो नीयत इंसान अंजाम देता है, जिसके नतीजे में इंसान की बॉडी में हरकत आती है ताकि वो उस हदफ को हासिल कर सके उस अमल के ज़रिए। ठीक है, ये आपको बात इंशाल्लाह समझ में आ गई होगी कि अमल दर हकीकत जो जिसको हम सोचते हैं कि ये फिज़िकल है, ये फिज़िकल होना उस नीयत का आउटपुट है। ये फिज़िकल होना अमल का, मसलन मेरे जहन में ये बात आई कि मसलन मुझे भूख लग रही है या चाय पीने का दिल चाह रहा है। अब ये जो दिल चाहना है ये नीयत में तब्दील होता है और फिर इंसान जो है वो उसके अंदर हरकत आती है, बॉडीली हरकत आती है और वो जाता है किचन में, चाय बनाता है और चाय पीता है। तो ये किचन में जाना, चाय और चाय बनाना, ये सब उस नीयत का फिजिकल रिजल्ट है, नतीजा है, आउटपुट है। बस अमल फिजिकल नहीं है। ये लास्ट सेशन का एक खुलासा था और मैं वो आयत दोबारा पढ़ लेता हूँ, सूरह तौबा की आयत नंबर 105। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا ہے خدا نے کہ لوگوں سے کہہ دو کہ جو عمل تم انجام دینا چاہتے ہو انجام دو، فسیر اللہ، خدا تمہارے اعمال کو، تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، ناظر ہے تمہارے عمل کے اوپر، اسی طرح رسول خدا بھی تمہارے عمل پر ناظر ہیں، والمؤمنون، اور اہل البیت علیہ السلام بھی تمہارے عمل پر ناظر ہیں۔ پھر اس آیت کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، عالم غیب اور شہادت میں تمہارے عمل کو دکھایا جائے گا، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یعنی تمہیں اس عالم قیامت میں، معاد میں لایا جائے گا اور وہاں پر تمہارے عمل کے بارے میں، اس کی حقیقت کے بارے میں تمہیں، فَيُنَبِّئُكُمْ، تمہیں خبر دی جائے گی۔ کہ انشاءاللہ یہ جو سیکنڈ حصہ ہے آیت کا، اور اس کو بھی انشاءاللہ دیکھیں گے کچھ حد تک، لیکن ہمارا جو مین فوکس ہے وہ اس پہلے حصے کے اوپر ہے کہ کس طرح ہمارے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے ان ہستیوں کی جانب، ان ہستیوں کے محضر میں۔ لیکن اس سے پہلے بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ اعمال کی تاثیر کیا ہے مختلف ڈائمنشنز کے اندر، آج اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ جس طرح لاسٹ سیشن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ خدا نے اس جہان کو، اس عالم کو ایک منظومے کی شکل میں بنایا ہے، یعنی اس عالم کے مختلف اجزاء ہیں اور یہ اجزاء آپس میں مرتبط ہیں، مختلف ایلیمنٹس ہیں، یہ ایلیمنٹس آپس میں مرتبط ہیں اور ان ایلیمنٹس کا ایک سینٹرل پوائنٹ ہے کہ یہ تمام ایلیمنٹس اس سے کنیکٹڈ ہیں۔ اسی طرح دین کو خدا نے اسی طرح نظام مند اور سسٹمیٹک انداز میں بنایا ہے۔ اب آپ اس کو ایک اور کلی عنوان دے سکتے ہیں، چونکہ مجھے عمل کے بارے میں ہی بات کرنی ہے تو آپ کو یہ نقطہ بھی سمجھنا ہوگا کہ خدا نے یہ پورا نظام وجود، اس کو ہم کہیں گے نظام وجود، ہم کہہ سکتے ہیں اس کو نظام عالم इससे एक और कुल्ली उन्वान क्या होगा? वजूद। आप देखें, ये कुरान, ये किताब, ये वजूद है, ये लैपटॉप वजूद है, ये मोबाइल वजूद है, ये टेबल वजूद है, ठीक है, जिस सोफे पे आप बैठे हुए हैं वो वजूद है, ये टीवी वजूद है, सब कुछ वजूद है और सब कुछ मौजूद है, ठीक है। अब ये जो निजाम है वजूद है, जिसके अंदर सब कुछ है, आसमान है, जमीन है, कहकशान है, सूरज है, सितारे हैं, आलम बरजख है, आलम है, और जितने भी अवालिम है, सही है, ये सब के सब वजूद है। निजाम है वजूद, ये सिस्टम ऑफ वजूद जिसके अंदर सब कुछ है, अब इसके अंदर इंसान है, और इसके अंदर, इस निजामे वजूद के अंदर ये इंसान एक अमल अंजाम देता है। अब जब इंसान निजामे वजूद के अंदर जब एक अमल को अंजाम देता है, दर हकीकत ये रिवायात के अंदर है कि इंसान अपने अमल के जरिए एक नए वजूद को खल्क कर रहा है। एक और हदीस में है कि इंसान जब अमले सालिहा अंजाम देता है तो उस अमले सालिहा के जरिए इंसान एक फरिश्ते को खल्क कर रहा है, एक फरिश्ते को ईजाद कर रहा है, सही। इसी तरह इंसान हर अमल के जरिए, चाहे वो अच्छा अमल हो चाहे वो बुरा अमल हो, उसके जरिए इंसान एक नए वजूद को खल्क कर रहा है। अच्छा, अब खल्क होने के बाद क्या होगा? ये जब वजूद खल्क में आ जाता है, नतीजे में ये वजूद तमाम आलम हस्ती के साथ, तमाम निजाम वजूद के साथ मुर्तबित और कनेक्ट हो जाता है। किस तरह? यानी जिस तरह ये निजाम वजूद आपस में कनेक्टेड है मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जरिए, ये अमल मेरा जब मैं अंजाम देता हूं, आप जब अंजाम देते हैं, पूरे आलम वजूद के साथ कनेक्टेड हो जाता है, या नीचे आलम वजूद के साथ कनेक्ट हो जाता है, आलम बरजख में भी इसका कनेक्शन पैदा हो जाता है, आलम दुनिया के अंदर तो ऑब्वियसली हो ही जाता है, लेकिन आलम बरजख में, आलम कयामत के अंदर, कयामत एक खुद एक आलम है, कयामत सिर्फ हिसाब और किताब की जगह नहीं है कि इंसान को वहां लाया जाएगा और पुलिस सिरात होगा और नामा आमाल आपको दिखाया जाएगा कि दिस इज योर नामा आमाल, और आप मसलन फिर इसका आउटपुट होगा और आप जाएं जन्नत में या खुदा ना खासा जहन्नम में। नहीं, कयामत एक आलम है, जिस तरह दुनिया एक आलम है, बरजख एक आलम है, इसी तरह कयामत और आखिरत भी एक आलम है। इसी वजह से अब मैं आपको ये बात कह दूं, आप इसके ऊपर सोचें, ज्यादा ना सोचें लेकिन सोचें, क्योंकि बिलाखिर एक ना एक दिन तो इंसान को ये सब फेस करना है, इस हकीकत को कि दुनिया, अब इसको मैं सवालिया अंदाज में पेश करता हूं कि आया आखिरत दुनिया में है या दुनिया आखिरत में है? आया आखिरत दुनिया में है या दुनिया आखिरत में है? जवाब यह है कि दुनिया आखिरत के अंदर है, ना आखिरत दुनिया के अंदर है। खूब, ये ब्रैकेट था, क्लोज, ओपन एंड क्लोज हो गया, फिलहाल इसको आप साइड पे रखें, बाद में सोचिएगा इंशाल्लाह। बस कयामत आखिरत एक आलम है, ठीक है, वहां पर एक, बल्कि कुरान के अंदर यही है कि, अब मेरे जहन में आयत क्लीन एंड क्लियर नहीं है, बल्कि इस तरह इसका मफहूम है कि आखिरत ही दर हकीकत तुम्हारी हकीकी जिंदगी है, आखिरत के अंदर हकीकी जिंदगी का आगाज होता है, दुनिया में हकीकी जिंदगी नहीं है। अब ये अमल जो मैंने अंजाम दिया है और इस अमल के जरिए मैंने एक नया वजूद खल्क किया है, क्रिएट किया है, अब चूंकि पूरा निजाम हस्ती आपस में मुर्तबित है, कनेक्टेड है, नतीजे में जैसे ही मैंने ये अमल अंजाम देना शुरू किया, यही ये अमल उस तमाम आलम हस्ती से कनेक्टेड हो जाता है, और इसके मुख्तलिफ कनेक्शंस, मुख्तलिफ डायमेंशंस में शुरू हो जाते हैं, क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। यानी मेरा एक अमल, अजीब है, मेरा ये चाय पीना, मैं टीवी देख रहा हूं, ये ऐसा नहीं कि अंजाम दिया और इसका ताल्लुक किसी चीज से ना हो, बल्कि इसका ताल्लुक तमाम दुनिया के अंदर तमाम चीजों से इसका ताल्लुक बन जाता है, जमाने के लिहाज से भी, मकान के लिहाज से भी, हर लिहाज से, और बरजख में भी मलाइका के साथ, फरिश्तों के साथ, और अस्माए इलाही के साथ, अस्माए इलाही के साथ ये मेरे आमाल मुर्तबित हो जाते हैं, और फिर इसके इफेक्ट्स और इसके रिजल्ट्स और इसके नतायज आना शुरू होते हैं दुनिया में पहले। बस अगर ऐसा वजूद जो इन सब के साथ मुर्तबित हो जाता है, अब आप खुद सोचें कि इसका असर क्या होगा, इसका असर क्या होगा अगर मेरा अमल तमाम वजूद के साथ, तमाम निजाम हस्ती के साथ मुर्तबित हो जाता है, मलाइका के साथ मुर्तबित हो जाता है, अस्माए इलाही के साथ मुर्तबित हो जाता है, कि अस्माए इलाही के बारे में इंशाल्लाह माहे रमजान के अंदर बहस करेंगे। इसी तरह आलम बरजख, आलम कियामत और तमाम दीगर, अभी हम असरात के ऊपर आएंगे, इस पूरे आलम हस्ती के साथ मुर्तबित हो जाता है, तो इसका असर कितना होगा फिर? मेरा ये चाय पीना, मैं ये मोबाइल देख रहा हूँ, व्हाट्सएप देख रहा हूँ, लोगों के प्रोफाइल पिक्स देख रहा हूँ, लोगों के स्टेटस देख रहा हूँ, और 10 मिनट मैंने मसलन जाया कर दिए, मैंने सिर्फ स्टेटस देख रहा हूँ। मसलन किसी ने हदीस फॉरवर्ड कर दी है, हदीस देख रहा हूँ, किसी ने कोई कोट, कोई नकल किसी का, कि कोई अच्छी बात कोई लगी तो फॉरवर्ड कर दी, ठीक है, किसी ने कोई वीडियो क्लिप, आजकल तो बेहतरीन फॉरवर्डिंग्स हो रही हैं क्योंकि कोरोना है और लोग घरों में बैठे हुए हैं, तो मोबाइल के ऊपर ज़्यादा टाइम लोग बिता रहे हैं, तो फॉरवर्डिंग और सब कुछ हो रहा है। तो अब आप देखिए, मैं 10 मिनट इसके ऊपर मैंने मोबाइल पे लगा दिए, अब ये 10 मिनट लगाना मोबाइल के ऊपर तमाम आलम हस्ती के साथ और तमाम निज़ाम वजूद के साथ मुर्तबित हो जाता है, बस इसका असर भी इस कदर वसी होगा, इसका असर भी इस कदर वसी होगा। जो लोग, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ा है, वो ये जानते हैं कि फिजिक्स के अंदर एक कायदा है, अब उस कायदा का नाम अब मेरे जहन में नहीं है, लेकिन सिंपल सा कायदा है, सब इसको एक्सेप्ट करते हैं, फिजिकल दुनिया में, जिस्मानी दुनिया में ये कायदा एक्सेप्टेबल है स्कॉलर्स के अंदर, कि अगर ये मैंने, फॉर एग्जाम्पल, ये अमल मैंने, ये मोबाइल, ये भी वजूद है, इस वजूद को, इस मोबाइल को मैंने यहां से यहां रख दिया, दुनिया में, निजाम हस्ती में, कहकशानों में, गैलेक्सीज में, इस पूरे आलम हस्ती में जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, सब के सब दरहम बरहम हो जाती हैं इस एक जाबिजाई से, तमाम कैलकुलेशंस चेंज हो जाती हैं। ये फिजिक्स का कानून है, एक्सेप्टेबल है सितारों के अंदर, कहकशानों के अंदर, और तमाम आलम हस्ती के अंदर, इस फिजिकल हस्ती के अंदर तमाम की तमाम कैलकुलेशंस बदल जाती हैं इस एक जाबजाई के जरिए। जितने भी जाज्बे हैं वो चेंज हो जाते हैं, कैलकुलेशंस अलग हो जाती हैं, मुहासिबात अलग हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब इंसान का जो अमल है, इंसान का जो अमल, अब ये रिवायात के अंदर है कि इंसान जब एक अमल अंजाम देता है, हस्ती के अंदर, निजाम हस्ती के अंदर या कमाल ईजाद होता है, अगर मैंने अच्छा अमल अंजाम दिया है, मैंने नमाज अव्वल वक्त पढ़ी है, ओके, तिलावत कुरान मैंने इसका अमल अंजाम दिया है, तिलावत कुरान का अमल, तमाम निजाम हस्ती के अंदर कमाल ईजाद होता है, तमाम निजाम हस्ती के अंदर, सिर्फ मेरे अंदर कमाल ईजाद नहीं हो रहा, बल्कि आलम हस्ती के अंदर कमाल ईजाद हो रहा है। और अगर मैंने खुदा ना खास्ता कोई गुना अंजाम दिया है, किसी खुदा ना खास्ता किसी नामहरम की तरफ एक इंसान की अगर निगाह पड़ जाती है, या किसी ने कोई और गलत काम अंजाम दिया है, कोई झूठ बोला है खुदा ना खास्ता, इस अमल के जरिए तमाम निजामे हस्ती के अंदर एक नक्स की तरफ इंसान हरकत करता है, यानी इंसान कोशिश कर रहा है कि मैं अपने इस गलत अमल के जरिए निजामे हस्ती के अंदर नक्स ईजाद करूं, लेकिन खुदा ने जो इस निजाम हस्ती को बनाया है, इसके अंदर कोई नक्स पैदा नहीं किया है, बगैर नक्स के है। लेकिन इंसान जो अमल अंजाम देता है गुनाह, इसके जरिए निजाम हस्ती को नक्स की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। नतीजे में निजाम हस्ती क्या करती है, एक रिएक्शन दिखाती है, मुकावमत दिखाती है, रेजिस्टेंस दिखाती है। एक और ताबीर के मुताबिक, अगर मैं अच्छा अमल अंजाम दूं, अगर इंसान अच्छा अमल अंजाम दे, तो निजाम हस्ती खुशहाल होती है, निजाम हस्ती खुशहाल होती है। और अगर मैं कोई गलत अंजाम दूं, तो ये पूरा आलम हस्ती नाराज और नाराहत हो जाता है। अब आप देखें किस कदर एक अमल का असर है पूरे आलम हस्ती के अंदर। एक और कानून है, वो ये है कि उसका नाम है, इंग्लिश में इसको कहते हैं द बटरफ्लाई इफेक्ट। द बटरफ्लाई इफेक्ट फारसी में कहते हैं कानूने परवाने। द बटरफ्लाई इफेक्ट में कहा यह जाता है, कानून ये है कि अगर एक बटरफ्लाई, एक परवाने दुनिया के उस कोने में एक पर अपना पर हिलाती है, दुनिया के फॉर एग्जाम्पल उस कोने में अपना पर हिलाती है, उस पर हिलाने के नतीजे में दुनिया के इस कोने में जलजला आ जाता है। सही, पर वहां हिला है, उस कोने में जलजला इस कोने में आया है। तो ये फिजिक्स का कानून है, और ये बिलाखिर और उलमा और स्कॉलर्स जो हैं वो साइंस के इसको एक्सेप्ट करते हैं, ये इसके ऊपर रिसर्च हुई है। अगर फिजिकल दुनिया में ये इसके असरात हैं, ठीक है, तो मानवी दुनिया में जो कि फिजिकल दुनिया से बहुत ज्यादा वसी है, ये फिजिकल दुनिया तो कुछ भी नहीं है, तो वहां पर भी क्या असरात होंगे। इंसान जब अमल अंजाम देता है, कोई नियत अंजाम देता है, क्योंकि रिवायत के अंदर है कि नियत एक खुद आलम है, खुद नियत एक आलम है। सही, तो इंसान जब नियत अंजाम देता है और अमल अंजाम देता है, तो क्या असरात इसके होंगे। अब वो असरात पे इंशाल्लाह हम आते हैं कि एक अमल का मुख्तलिफ डायमेंशंस के अंदर क्या असरात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि बहस इतना वसी मौजू है, बिलाखिर इंसान को हिम्मत चाहिए कि इस बहस को समझे और इसको पेश करे, और सामेईन से भी बिलाखिर तवक्को है कि इसको समझे, ताकि इंसान की जिंदगी में असर आए, क्यों इतनी मुश्किलात हैं। अब आप खुद देखेंगे, जब मैं असरात आपके सामने बयान करूंगा, आप खुद एहसास करेंगे कि वाकई ये जितने भी आलम के अंदर हवादिस पेश आते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ताल्लुक हमारे आमाल का है। अब यहां पर जो अमल के जो असरात हैं, अमल के जो इफेक्ट्स हैं, आफ्टर इफेक्ट्स हैं, इसको हम किस एंगल से देखेंगे, इसको हम इसके वसअत के एतबार से देखेंगे कि ये जो मैंने अमल अंजाम दिया है, मोबाइल देखा है मैंने, या चाय पी है, टीवी देखा है, मूवी देखी है मैंने, इसके असरात क्या है उसकी वसअत के एतबार से, किस एंगल में इसके इफेक्ट्स हो रहे हैं, रूनुमा हो रहे हैं, क्या चेंज इस पूरे आलम हस्ती में अंजाम पा रहा है एक अमल के जरिए। अल्लामा तबातबाई, अब फिर हमें उस आयत पे भी आना है कि अल्लामा तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह ने भी अलमीजान में ये कहा है कि ये जो आयत है, जालिका यौम के कयामत के नामों में से एक नाम है यौमुल जम्र, कि जहां पर लोगों को जमा किया जाएगा। अब हम जब ये असरात देखेंगे, फिर आपको इंशाल्लाह ये भी समझ में आ जाएगा कि कयामत में क्यों लोगों को जमा किया जाएगा, ताकि तमाम इंसानों के आमाल सबके सामने दिखाए जाएंगे। क्यों? अब अमल के असरात अगर आप इसको नोट डाउन करें, सबको बताएं, तो इंशाल्लाह आपके लिए भी मुफीद होगा, दूसरों के लिए भी मुफीद होगा, और इंसान के अंदर फिर एक अमली तकवा उसके अंदर पैदा होगा, उसके वजूद के अंदर। सबसे पहला असर, मैं पहले लिस्ट आपको बता देता हूं, लिस्ट, ठीक है, फहरिस्त, फिर इंशाल्लाह जितना टाइम बचेगा उसके एतबार से हम आज के सेशन में देखते हैं कहां तक पहुंच सकते हैं। इंसान जब एक अमल अंजाम देता है, अब मैं एक मिसाल दे देता हूं, उस मिसाल को हम फिर तदबीक करेंगे तमाम उस उन असरात के अंदर। मसलन मैंने ये मोबाइल देखा है 5 मिनट, आप इसको ये मिसाल होगी, हम इस मोबाइल को मिसाल ले लेते हैं, और मिसाल ये है कि मैंने मोबाइल देखा है 5 मिनट, तमाम लोगों के स्टेटस, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स और मूवी सब कुछ, मतलब मैं 5 मिनट के अंदर मोबाइल के अंदर मैं मसरूफ हूँ, ठीक है, अब कोई भी वजह हो मोबाइल देखने की, लेकिन मैं इस वक्त मोबाइल देख रहा हूँ। अब ये मेरा एक अमल है जो फरिश्ते किरामन कातबीन इसको लिख रहे हैं, और अब इसके असरात देखें आप। ये मेरा एक अमल जमाने माजी के अंदर मैंने जितने भी आमाल अंजाम दिए हैं, जमाने माजी में, पास्ट में, माजी में जितने भी मैंने आमाल अंजाम दिए हैं, उन तमाम के अंदर मेरा ये अमल असरअंदाज होता है, जितने भी आमाल अंजाम दिए हैं। दो, अब ये सेकंड, मेरा यही अमल जमाने मुस्तकबिल में मैं जितने भी आमाल अंजाम देने वाला हूं, उन सब आमाल के ऊपर मेरा ये अमल, आज का अमल, अभी जो मैं अंजाम दे रहा हूं, ये फ्यूचर के जितने भी आमाल हैं उसके ऊपर असरअंदाज होंगे। ठीक है, अभी बात क्या हुई, इसके इफेक्ट्स कहां थे, आपने देखे आमाल के अंदर, किसके आमाल, मेरे आमाल, मेरा ये अमल मेरे माजी के तमाम आमाल के अंदर असरअंदाज हो रहा है, मेरा यही अमल फ्यूचर में, मुस्तकबिल में तमाम आमाल के अंदर असरअंदाज हो रहा है। अब यहां तक ये दो, एक और दो, अब तीन, मेरा ये अमल माजी में जितने भी इंसान गुजर चुके हैं तारीख में, तारीख में अंबिया से लेकर, फॉर एग्जाम्पल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जो नस्ल पैदा हुई है अब तक, जो भी इंसान गुजरे हैं, मेरा ये अमल उन तमाम इंसानों के ऊपर असरअंदाज और उनके आमाल के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। अब आप देखें, अजीब नहीं है? अच्छा, मेरा यही अमल, ये चारों चार, मेरा ये अमल आइंदा जितने भी इंसान आने वाले हैं और उनके जितने भी आमाल हैं, ये अमल उसके ऊपर, उनके ऊपर असरअंदाज होगा। ये चार, पांच, परेशान तो नहीं हो रहे इंशाल्लाह। पांचवा असर ये है कि मेरा ये अमल, अब आपने कहा कि जमाने माजी, जमाने मुस्तकबिल, आज के जमाने में कोई असर नहीं है, बिल्कुल है, आज के जमाने में मैं इस वक्त जितने भी इंसानों के साथ मुर्तबित हूं, मैं इस वक्त जितने भी इंसानों के साथ मुर्तबित हूं, और मेरी इस वक्त मेरी जिंदगी में, इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान इस वक्त जिंदा हैं, मेरा ये अमल उन तमाम इंसानों के ऊपर असरअंदाज हो रहा है जो इस वक्त जिंदा है, इस वक्त दुनिया, कोई मसलन अफ्रीका में है जिनको मैं शायद जानता भी नहीं हूं, लेकिन मेरा यही अमल उन तमाम इंसानों के ऊपर, उनके आमाल के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। ये पांच, और छठा और आखिरी असर वो ये कि मेरा यही अमल, यही मोबाइल देखना 5 मिनट, यही चाय पीना, फॉर एग्जाम्पल, जितने भी हवादिस इस आलम में रूनुमा हो रहे हैं, उन तमाम हवादिस के अंदर मेरा ये अमल असरअंदाज हो रहा है। अगर मैंने अमल सालेह अंजाम दिया है तो नतीजे में अच्छे हवादिस पेश आएंगे, इस जमीन के ऊपर बरकात नाजिल होंगी, ये अल्लामा तबातबाई ने अलमीजान में फरमाया है। अल्लामा तबातबाई रहमतुल्ला अलैहि, रहमतुल्ला अलैहि, जिन्होंने 20 जिल्दी अलमीजान की तफसीर लिखी आज से कई साल पहले, उसके इस तफसीर के बारे में पहले उलमा ये फरमाते थे कि हर 10 साल बाद या हर 20 साल बाद एक नई तफसीर मीजान लिखी जानी चाहिए, लेकिन आज उलमा ये फरमाते हैं कि हमें हर 6 महीने बाद एक नई अलमीजान की जरूरत है हर 6 महीने बाद। क्यों हर 6 महीने बाद? क्योंकि हर रोज नए हवादिस पेश आ रहे हैं, नए मसाइल पेश आ रहे हैं, इंसानियत को मुख्तलिफ और जदीद मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा उलमा फरमाते हैं कि हमें हर 6 महीने बाद एक नई अलमीजान की जरूरत है। अब ये अल्लामा तबातबाई फरमा रहे हैं कि इंसान के जो आमाल हैं, अलबत्ता उन्होंने खुद अहादीस से ही इसको इस्तिंबात किया है और डिराइव किया है कि इंसान के आमाल तमाम हवादिस आलम के साथ मुर्तबित हैं, या अगर अच्छे आमाल सालेह आमाल अंजाम दिए हैं तो आसमान से बरकतें नाजिल होंगी, अगर बुरे आमाल अंजाम दिए हैं तो आसमान से बलाएं नाजिल होंगी। अब मैंने आपको सिर्फ फहरिस्त बयान की है आमाल की तासीरात के हवाले से। अब चूंकि हमारे पास टाइम कम है तो अभी फिलहाल मैं एक जो असर अभी बयान किया है उसको हम डिटेल में आएंगे, और फिर इंशाल्लाह बाकी जो असरात हैं उसको हम डिटेल में अगले सेशंस में देखेंगे। पहला असर क्या था इंसान के आमाल का? वो ये था कि इंसान के आमाल उसके माजी के तमाम आमाल से मुर्तबित हो जाते हैं और असरअंदाज होते हैं। किस तरह? वो इस तरह से कि अगर अगर इंसान ने एक अमल सालेह अंजाम दिया है, मसलन नमाज अव्वल वक्त पढ़ी है, खुम्स दिया है, जकात दी है, हज को अंजाम दिया है, किसी फकीर की मदद की है, किसी फकीर की मदद की है, किसी को सलाम किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ये थी कि वो हमेशा दूसरों को सलाम करने में पहल किया करते थे, हमेशा दूसरों को पहले सलाम करते थे, यानी लोगों को मौका नहीं मिलता था कि हम पहले सलाम करें नबी अकरम से, हमेशा वो पहल करते थे। अब ये अमले साले हैं, सलामुन अलैकुम कहना अमले साले हैं, इसके असरात हैं। अगर इंसान जब ये अमले साले अंजाम देता है तो मेरा ये अमले साले मेरे माजी में जितने भी आमाल मैंने अंजाम दिए हैं उन तमाम आमाल को एक दर्जा, बल्कि आप कह सकते हैं कई दर्जात ऊपर लेकर आता है। मिसाल के अभी आप ये प्रेजेंटेशन भी देखें, वाइट बोर्ड एनिमेशन भी आप देखें, वो ये मसलन इंसान जब बालिग होता है तो बालिग होने के बाद इंसान के ऊपर शरई जिम्मेदारियां वारिद होती हैं, और उसके बाद फिर इंसान जब बालिग होने के बाद अच्छे आमाल अंजाम देगा तो सवाब मिलेगा, बुरे आमाल अंजाम देगा तो गुनाह मिलेगा। ठीक है, ये बालिग होने के बाद है। अब बुलूग के बाद जितने भी इंसान ने आमाल अंजाम दिए हैं, ठीक है, नमाज अव्वल वक्त पढ़ी है, फकीर की मदद की है, दूसरों को सलाम किया है, वालिदैन की खिदमत की है, वालिदैन को वालिदैन के साथ अच्छे बर्ताव के साथ इंसान पेश आया है बुलूग के बाद, मसलन इंसान 16 साल का है, 17 साल का है अगर एक लड़का है, अब आप देखें जितने भी इंसान आमाल अंजाम देता है वो कहां से, उसका सोर्स क्या है? उसका ईमान है। ईमान के मुख्तलिफ लेवल्स हैं। अब फर्ज करें ईमान का लेवल नंबर 1, ईमान के फॉर एग्जाम्पल 10 लेवल्स हैं, आपको फर्ज करें 10 लेवल्स हैं ईमान के। अब जब इंसान बालिग होता है तो इंसान ईमान के लेवल नंबर 1 पर है, लेवल नंबर 1। मैं मिसाल दे रहा हूं, हो सकता है मुमकिन है कोई बालिग हो तो लेवल नंबर 5 पर हो, लेकिन फर्ज करें इंसान जो है वो अगर चले 20 साल की उम्र में कोई इंसान अमल अंजाम देता है तो लेवल नंबर 5 ऑफ ईमान के ऊपर ये से ये अमल अंजाम पा रहे हैं। इंसान लेवल नंबर 5 पर फाइज है ईमान पर, और इस लेवल नंबर 5 ऑफ ईमान से इंसान अब नमाज अव्वल वक्त अंजाम दे रहा है, जकात और खुम्स दे रहा है, और दीगर अच्छे आमाल अंजाम दे रहा है। अब आप फर्ज करें अब यही इंसान जो 20 साल का है और लेवल नंबर 5 ऑफ ईमान पर फाइज था, अब 25 साल की उम्र में यही इंसान लेवल नंबर 7 ऑफ ईमान पर है और वही अच्छे आमाल अंजाम दे रहा है। अब क्या होगा? अब बात असल यहां पर है कि अगर यही इंसान जो 25 साल का हो चुका है, 25 سال کا انسان جو عمل انجام دے لیول نمبر 7 پر، جب یہ عمل صالح انجام دے گا تو ماضی کے اندر جتنے بھی اس نے اعمال لیول نمبر 2 لیول نمبر 3 آف ایمان پہ اس نے انجام دیے تھے، یہی عمل اب ان تمام گزشتہ اعمال کو چند درجے اوپر لے کر آئے گا. یعنی اگر انسان نے لیول نمبر 7 آف ایمان پر یہ عمل انجام دیا ہے تو ماضی کے جتنے بھی اعمال تھے جو لو لیولز پر انجام پائے تھے ان تمام اعمال کو لیول نمبر 7 پر لے کر آئے گا. یہی عمل اگر میں نے آج نماز اول وقت انجام دیے تو ماضی کے جتنے بھی اعمال تھے نماز اول وقت اور جتنی بھی اعمال تھے، اس کا تعلق صرف نماز اول وقت سے بھی نہیں ہوگا بلکہ تمام اعمال سے ہوگا. وہ تمام اعمال چند درجے اوپر آ جائیں گے. صحیح ہے، بات پیچیدہ ہے، دقیق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اسی لیے میں نے ایک ویڈیو میں اب یہی کہا تھا کہ دین کو اگر سمجھنا ہے تو لسنر کے ذریعے، لسنر کے عنوان سے اور سامعین کے عنوان سے دین کے پاس نہ آئیں بلکہ ایک اسٹوڈنٹ کے تحت، ایک اسٹوڈنٹ کے عنوان سے، ایک طالب علم کے عنوان سے. کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمت، واجب ہے تمام مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر طلب العلم واجب ہے. بس ہم اس کو ایک اسٹوڈنٹ کے اعتبار سے دیکھیں، اس کو لکھیں، کیونکہ نبی اکرم پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ علم کو کتابت میں قید کرو، علم کو کتابت میں قید کرو. کیوں؟ کیونکہ آپ جب علم کو سنیں گے اور اس کو نہیں لکھیں گے تو یہ فرار کر جائے گا، بھاگ جائے گا آپ سے، یہ آپ کے ذہن سے نکل جائے گا. یہ کیونکہ بالآخر جب آپ یہ سنیں گے اس سیشن کو سننے کے بعد آپ اپنا ٹی وی چینل بدل دیں گے. بالآخر اب آپ میرا ٹاک شو دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ دوسرا ٹاک شو دیکھیں گے، تو اس ٹاک شو میں جو آپ نے دیکھا ہے تو آبویسلی وہ انسان کے ذہن سے نکل جاتا ہے. پھر جب انسان اگلے اعمال میں مصروف ہو جاتا ہے، پس جب انسان دین کے محضر میں آئے، علوم اہل البیت علیہ السلام کے محضر میں آئے، تو ایک پیپر اور ایک پین لے کر آئے ساتھ میں، اس کو لکھنے کی کوشش کریں. امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہو کہ عمل صالح جب انسان انجام دیتا ہے تو آج ابھی میں نے ایک عمل صالح انجام دیا، میں نے تلاوت قرآن کی ہے، میں نے بجا لائی ہے. اب اس تلاوت کے عمل کے ذریعے میرے تمام پچھلے اعمال کے درجات اوپر آ جائیں گے. کس اعتبار سے؟ میرے اس روح ایمانی کے اعتبار سے. میرا جو اس وقت روح ایمان ہے، ایمان کا جو لیول ہے، چونکہ اس وقت اس زمانے میں ایک درجہ اوپر ہے پچھلے زمانے کے نسبت، اس وقت اوپر ہے، تو میرا یہ عمل پچھلے تمام اعمال کو بھی اس روح ایمانی کے لیول تک لے کر آئے گا. اوکے، اب یہ تو عمل صالح کی بات تھی. اگر انسان گناہ انجام دے، اب یہ خطرناک ہے، یہ خطرناک ہے. اگر انسان ایک عمل سیئہ انجام دے، خدا نہ خاصہ انسان جھوٹ کہتا ہے، کوئی غلط بات اور جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ کی اتنی مذمت ہے کیونکہ روایت کے اندر بھی ہے کہ جھوٹ تمام اعمال کی جڑ ہے، جھوٹ تمام اعمال کی جڑ ہے، تمام برے اعمال اس جھوٹ سے نکلتے ہیں. اب انسان نے، خدا نہ خاصا ایک مسلمان، ایک مومن نے جھوٹ کہا ہے، اب جب یہ جھوٹ کو انجام دے رہا ہے، جب یہ غلط اس غلط عمل کو کے اندر مصروف ہے، کیا ہوگا؟ یہ جو اس وقت عمل انجام دیتے وقت انسان جس روح ایمان پر فائز ہے، مثلا لیول نمبر 7، اب انسان لیول نمبر 7 آف ایمان پر فائز ہے، اس لیول نمبر 7 آف ایمان سے خدا نہ خواستہ، اب ایمان تو ہے اس کا، مومن ہے، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سچویشن پیش آ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کا جھوٹ بولنا بھی ناجائز ہے، غلط ہے اس کا جھوٹ بولنا. اب یہ جھوٹ بولنے سے یہ جو روح ایمان ہے لیول نمبر 7، یہ لیول نمبر 7 سے نیچے آ جائے گا. یہ لیول فار ایگزامپل لیول نمبر 5 لیول نمبر 4 تک چلا جائے گا، اور انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں جو اس وقت اس نے جو اب تک اس نے انجام دیے تھے، ماضی سے لے کر اب تک، ماضی سے لے کر اب تک جتنے بھی اعمال انسان نے انجام دیے تھے اس جھوٹ کی وجہ سے، اس عمل سیئہ کی وجہ سے، وہ تمام اعمال ان کے درجات بھی نیچے آ جائیں گے، ان کے تمام درجات نیچے آ جائیں گے. اب تو ہم نے صرف ایک اثر دیکھا ہے عمل کا، وہ بھی انسان کے ماضی سے مربوط. اب اگر میں بلاخر جتنے بھی وہ پانچ اثرات مزید باقی ہیں تو کیا ہوگا پھر جو چار اثرات مزید باقی ہیں؟ اب آپ دیکھیں ایک عمل انسان کا ایسا نہیں کہ میں نے عمل انجام دیا ہے اور یہ اس کا کوئی تعلق کسی چیز سے نہ ہو، نہیں، اس کا تعلق تمام عالم ہستی سے ہے. آپ نے خود دیکھا ایک عمل کا اثر ماضی کے اعمال کے ساتھ کس. اب آپ دیکھیں پھر قیامت میں حساب کتاب کس طرح ہوگا؟ خدا نہ خواستہ میں ان ایام میں، فار ایگزامپل کورونا کے ایام میں، مشکلات کے ایام میں، اور لوگوں کو اب انسانوں کی موت کا بھی نہیں پتہ ہے. پہلے یہ تھا کہ انسان کی شاید سب کانشیس مائنڈ میں یہ تھا کہ موت تو بعد میں آئے گی، لیکن اب سب کو خوف آ گیا ہے. اس وقت بعض کنٹریز میں کورونا کی وجہ سے جو مسلمان نہیں ہیں، مسلمان کنٹریز نہیں ہیں، وہاں پر سوسائڈ ریٹس میں اضافہ ہوا ہے، سوسائڈ ریٹس میں. تو آپ دیکھیں موت اب تو خدا انشاءاللہ، اب جب روایت کے اندر بھی ہے کہ انسان دو چیزوں کو زیادہ یاد کرے، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان ہمیشہ دو چیزوں کو یاد کرے، ایک خدا کو یاد کرے اور دو موت کو یاد کرے. ہماری سوسائٹی میں جو کلچر ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جب ہم موت کا نام لاتے ہیں زبان کے اوپر تو لوگ ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موت کا نام مت لو آپ، جبکہ امیر المومنین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ انسان خدا کو زیادہ یاد کرے اور موت کو زیادہ یاد کرے. اور جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو کون ذہن میں آتا ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام. کہ اساتید فرماتے کہ آپ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام کا نام لیں تو بہت ہی احترام کے ساتھ ان کو یاد کریں، آپ ان کو سلام پیش کریں، السلام علیکم یا حضرت عزرائیل، ان کو یاد کریں. کوئی ڈراؤنی فرشتے نہیں ہیں، صحیح ہے ہمارے ذہنوں میں کہ ڈراؤنی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، فرشتے ہیں، وہ مہربان ہیں. انسان جب نماز پڑھتا ہے، یہ بھی روایت کے اندر ہے، انسان جب نماز پڑھتا ہے مصلے کے اوپر تو حدیث میں ہے کہ نماز پڑھتے وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کو، اس شخص کو، نمازی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نگاہ کر رہے ہوتے ہیں. بالآخر انسان موت کبھی بھی آ سکتی ہے. اب موت کے جب اتنے خطرات اب زیادہ ہو چکے ہیں، اب کبھی بھی انسان کو موت آ سکتی ہے اس وبا کی وجہ سے. اب آپ دیکھیں انسان کا جب خدا نہ خاصہ عمل ناصالحہ اور ایک گناہ کی وجہ سے اور ایک گناہ کے اندر اس دنیا سے چلا جائے تو کیا ہوگا؟ اس گناہ کی وجہ سے اس کے جو پچھلے جتنے بھی اچھے اعمال تھے ان اعمال کے درجات اب نیچے آ جاتے ہیں، اور اس نچلے اور اس نیچے درجات کی وجہ سے وہ کی حالت میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اب کیا اس کا حساب و کتاب ہوگا؟ اس کا عالم برزخ کیا ہوگا؟ اب آپ مجھے بتائیں. اب ہمارے اعمال کی وجہ سے آپ دیکھیں، لاسٹ سیشن میں یہ بات کی تھی نا کہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے یا امام زمانہ علیہ السلام کو خوش کرتے ہیں یا ان کو ناراض کرتے ہیں. علی ابن محزیار الاحوازی رحمت اللہ علیہ، جو کہ غیبت صغریٰ کے زمانے میں جو فوت ہوئے تھے، انہوں نے 20 سال حج انجام دیے، 20 مرتبہ حج انجام دیے. علی ابن محزیہ نے 20 مرتبہ حج انجام دیے اس امید کے ساتھ، ہر سال حج پہ جاتے تھے اس امید کے ساتھ کہ میری اس حج میں امام زمان سے ملاقات ہو جائے. 20 سال گئے، 20 سال تب اس امید کے ساتھ، لیکن کیا ہوا؟ ملاقات نہیں ہوئی. اب 21ویں سال انہوں نے کہا کہ اس بار میں حج پہ نہیں جاؤں گا. اگر ملاقات ہونی تھی تو بالآخر ان 20 سالوں کے اندر ہو جانی تھی، کیونکہ امام حج پہ آتے ہیں اور میری ملاقات اگر ہونی ہوتی تو ہو جاتی، لیکن نہیں ہوئی تو اس سال میں نہیں جاؤں گا. کیا ہوتا ہے؟ خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں کہ اے علی ابن محزیہ، اس بار، اس سال تم حج پر جاؤ. ہو अब निदा आती है, किसकी निदा होती नहीं मालूम, लेकिन नियत करते हैं हज के लिए, और हज का जब मौसम आता है तो वो हज के लिए रवाना होते हैं। और हज के अंदर एक शख्स आता है उनके पास, और वो शख्स उनसे कहता है कि वो खेमा तुम देख रहे हो, आओ मैं तुम्हें उस खेमे की तरफ ले जाऊं। और उस खेमे की तरफ ले जाता है वो शख्स, और उस खेमे जब वो अली इब्ने महज़िया रहमतुल्लाह अलैह उस खेमे की तरफ जाते हैं, तो उस देखते हैं उस खेमे से एक अजीब नूर और नूरानियत निकल रही है। वो पूरा एरिया नूरानियत और नूर से भर चुका होता है। वो शख्स कहता है कि तुम ठहरो, मैं उस खेमे से आता हूं और इमाम से इजाजत लेकर आता हूं, और फिर इंशाल्लाह तुम्हें भी मैं एंट्री दूंगा। अली इब्ने महज़िया इंतजार करते हैं, वो शख्स जाता है अंदर, वापस आता है, और बिलाखिर अली इब्ने महज़िया को इजाजत मिलती है कि जाओ, इमाम तुम्हारे मुंतजिर हैं। अली इब्ने महज़िया जाते हैं, एक मुफस्सल बिहारुल अनवार के अंदर ये वाकया है, मुफस्सल डिटेल्ड वाकया है, मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूं। अली इब्ने महज़िया रहमतुल्लाह अलैह खेमे में जाते हैं, और इमाम की जितनी भी फिजिकल खसूसियात हैं, चेहरे की खसूसियात, कद की खसूसियात, वो तमाम की तमाम नकल करते हैं, और बिहार के अंदर ये खसूसियात आई हैं। अली इब्ने महज़िया इमाम से मिलते हैं, और पहला जुमला सलामुन अलैकुम के बाद, और इमाम ने सलामुन अलैकुम कहा, उन्होंने जवाब दिया अली ने, फिर इमाम ने जो जुमला फरमाया वो हैरान कौन है। इमाम ने फरमाया, ए अली इब्ने महज़िया, हम शबो रोज तुम्हारे मुंतजर थे, शबो रोज तुम्हारे मुंतजर थे, क्यों इतनी देर कर दी तुमने आने में। अली इब्ने महज़िया 20 मरतबा इसी उम्मीद के साथ हज अंजाम दिया उसने कि मेरी इमाम से मुलाकात हो जाए, अब इमाम क्या फरमा रहे, हम शबो रोज तुम्हारे मुंतजर थे, क्यों इतनी देर कर दी तुमने आने में। अब अली इब्ने महज़िया ने जवाब में क्या फरमाया कि ए मेरे आका, ए मेरे इमाम, मुझे अब तक कोई ऐसा शख्स नहीं मिला, ऐसी कोई दलील नहीं मिली, ऐसा कोई रहनुमा नहीं मिला जो मुझे आपकी तरफ रहनुमाई करे, कोई रहनुमाई करने वाला नहीं मिला ए इमाम। इमाम ने क्या फरमाया, इमाम ने फरमाया क्या तुम्हें कोई रहनुमा नहीं मिला, कोई बताने वाला नहीं मिला कि मैं कहाँ हूं, मुझ तक पहुंचने वाला रास्ता क्या है, कोई नहीं मिला तुम्हें। इमाम ने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की यहां पर, और दो या तीन चीजें बताई कि जिसकी वजह से इमाम अली इब्ने महज़िया से कुछ हद तक नाराज थे। अलबत्त बाद में आपस में सुलह हो गई और नाराजगी खत्म हो गई। इमाम ने फरमाया कि लेकिन तुम लोगों ने मोमिनीन के फकीर तबके पर इतनी सख्ती क्यों की तुमने, फकीर मोमिनीन पर इतनी सख्ती क्यों की तुमने, एक यानी उनकी परवाह क्यों नहीं की, और अपने रिश्तेदारों के दरमियान सिले रहमी तुमने अंजाम क्यों नहीं दी। ये इमाम ने अली इब्ने महज़िया को, अली इब्ने महज़िया बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ी शख्सियत है, मुहद्दिस, 3 से 4 अइम्मा के सहाबी, आखिरी जो 3 अइम्मा हैं, 4 अइम्मा अलैहिस्सलाम उनके सहाबी रहेंगे, उनको ये इमाम फरमा रहे हैं। इमाम उनको ये फरमा कि तुमने मोमिनीन के फकीर लोगों की परवाह नहीं की और अपने रिश्तेदारों के दरमियान सिले रहमी अंजाम नहीं दी। अब ये सिले रहमी अंजाम नहीं देना, इसके 3 तबकात हैं। आप ये मत समझे कि सिले रहमी सिर्फ खानदान के दरमियान है, सिर्फ रिलेटिव्स के दरमियान है, नहीं, इसके 3 से 4 कैटेगरीज हैं। सिले रहमी खानदान और रिश्तेदारों के दरमियान, सिले रहमी मोमिनीन के दरमियान, मोमिनीन आपस में रहम है आपस में, और सिले रहमी उलमा के दरमियान। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आपको याद हो हमने ये बात पहले की थी कि रहीम दर हकीकत जो हमारे असली रहीम हैं वो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हैं, अहलुल बैत अलैहिस्सलाम हमारे असली रहीम हैं। अगर हमने अपने रिश्तेदारों, खानदानी रिलेटिव्स के दरमियान सिले रहमी अंजाम नहीं दी, तो नतीजे में اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ صلہ رحمی انجام نہیں دی، نتیجے میں خدا کے ساتھ ہم نے قطع رحمی کی ہے. یہ مراتب ہیں. خوب، اس کے اوپر مومنین آپس میں صلہ رحمی اختیار کریں. اگر مومنین آپس میں ملاقات نہیں کرتے ہیں تو نتیجے میں امام سے قطع رحمی اختیار کر رہے ہیں، نتیجے میں خدا کے ساتھ قطع رحمی ہے. بس صلہ رحمی ان تمام کیٹیگریز کے اندر ضروری ہے. اگر صلہ رحمی ان مومنین کے درمیان نہ ہوئی، ریلیٹیوس کے درمیان نہ ہوئی، علماء کے درمیان اور دیگر جتنے بھی طبقات ہیں ان کے درمیان صلہ رحمی نہ ہوئی، بالآخر اس کی آپ دیکھیں نتیجہ کیا ہوگا، امام کی ناراضگی. جس طرح امام علی ابن مہزیار سے ناراض ہو گئے تھے، ہم سے بھی ناراض ہو جائیں گے. ہم سے تو بالآخر، ہم تو ایسے زمانے میں ہیں جہاں پر اتنی پیش رفتہ چیزیں ہیں اور ٹیکنالوجی ہے اور زمانہ بہت آگے جا رہا ہے، دنیا آگے جا رہی ہے، تو اس دنیا کے آگے جانے میں ہم کیوں پیچھے ہو رہے ہیں، ہم کیوں پیچھے جا رہے ہیں؟ بالآخر ہم سوچیں اس کے اوپر، تھوڑا غور و فکر کریں، اپنی عاقبت کے بارے میں سوچیں، اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، عالم برزخ کے بارے میں سوچیں، عالم آخرت، معاد، قیامت کے بارے میں سوچیں. انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ خدایا، بحق اہل بیت علیہ السلام، بحق امام زمانہ علیہ السلام، ہمیں اعمال صالحہ کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تمام مریض، تمام وہ مریض جو کرونا وائرس سے انفیکٹڈ ہیں اور جتنی بھی اور جو بھی دیگر بیماریوں سے دوچار ہیں، خدایا تمام مریضوں کو شفا کامل و عاجل عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وآل محمد.